ओम शांति।
वर्तमान समय प्रमाण हम सब ब्राह्मणों के बीच एक संकल्प बार बार उठता है। हालांकि सब चिंताओं से हम मुक्त हैं, लेकिन बाबा ने एक ओना दिया है कैसे जल्द से जल्द प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष किया जाए। आइए इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय करुणा भाई जी। हम सब आपका सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने लौकिक में इंजीनियरिंग एवं जर्नलिज्म में शिक्षा पाई है। 1960 में आपको बाबा का ज्ञान मिला, जिसके बाद दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। 1971 से मधुबन मुख्यालय में आप पीआरओ का पद संभाल रहे हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप मैनेजर हैं, मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। मल्टीमीडिया द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की ये विहंग मार्ग की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका है। हम सबके घर में बाबा को पहुंचाने का और घर घर में बाबा का संदेश पहुंचाने का कार्य जिस मीडिया विंग के द्वारा चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, तो उस मीडिया के द्वारा कैसे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं एवं ब्राह्मणों का इसमें कौन सा योगदान रहेगा, आइए इस विषय पर क्लास सुनेंगे आदरणीय करुणा भाई जी।
ओम शांति। मुझे आप सबको देखते हुए जो आज का टॉपिक है बाबा की प्रत्यक्षता, जैसे आप सबके नजरों से मुख कमल से मुझे अभी ही नजर आ रहे हैं कि बाबा आप सबके द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि आप ही जानते हो इस सृष्टि पर स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। तभी तो आप सभी स्वयं परमात्मा से मिलने लिए यहां तक आए हैं। बाबा कहते हैं कोटों में को करोड़ों में कोई, बहुत लोग चाहते हैं परंतु यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, परंतु आप सभी बच्चे कोई पहली बार आए हैं, कोई तो मैं जानता हूं अनेक बार इस बाबा के स्थान पर आ चुके हैं। मुझे वो दिन याद आता है पहली बार सन 1960 में जब अबू पर्वत पर आया था, यही एक संदेश सुन करके कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अबू पर्वत पर आ चुके हैं, अवतरित हो चुके हैं। जब एक तपस्वी योगिनी देवी जी से मैंने सुना, मुझे लगा ये सच कह रहे हैं, इनके मन में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ ऐसा बतावे जो उनके कोई स्वार्थ उसके पीछे हो, ऐसा नहीं दिखाई दिया। तो मैंने कहा जब कह रहे हैं स्वयं परमपिता परमात्मा आ चुके हैं, तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं बैंगलोर में। तो मैं उसी वक्त उन्होंने कहा मैं अबू पर्वत जा रहा हूं। 20-21 साल का था, जीवन का आदिकाल था, बहुत अच्छा प्रोफेशन में था, पर संस्कार जो बचपन से इस भारत की सनातन धर्म की है, तो भगवान से बड़ा कोई है नहीं, तो भगवान से मिलने मैं यहां आ गया था। तो भगवान की प्रत्यक्षता मुझे कैसे हुई? पहली बात, पहली मुलाकात मम्मा से हुई। मम्मा मुझे देखते ही एक शब्द मेरे कान में कहा, अरे ये तो कलप पहले वाला बच्चा है। मैंने कहा, मम्मा ये क्या कह रही है, मैं इतना ज्ञान भी इतना डेप्थ में नहीं था। हालांकि मम्मा के पूरे किताब उस समय पर सच्चा गीता ज्ञान मम्मा की ही लेक्चर्स के किताब थे, वो सारा पढ़ा था। मम्मा के ऊपर बहुत विश्वास था कि ये सचमुच सरस्वती है, ज्ञान की देवी है। पर जब मम्मा ने ये कहा ये कल्प पहले वाला बच्चा है, तो मुझे लगा कि मम्मा भविष्यवाणी कैसे कर रही है, मम्मा को ये कैसे पता ये कौन है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आ रहे हैं, यहां तक तो मुझे विश्वास है, पर मम्मा ये कैसे कह सकती है। तो वो बात आज भी मैं आपके सामने बैठा हूं, तो ये है मम्मा। मम्मा हर आत्मा को जानने की शक्ति थी, देखते ही बता देती थी कि ये कौन है। आज हमारी जानकी दादी भी पूर्वजों को बहुत याद करती है, और जब कभी ऐसी कोई आत्मा उनके सामने आती है, वो सीधा बोल देती है कि ये अभी का नहीं है, ये पहले वाली आत्मा है। आज भी हमारी दादियां ये परख लेती है कि ये कौन सा बाबा का बच्चा है, क्योंकि हम दादी इनसे मिलते रहते हैं। तो मम्मा ने जब ये कहा तो मैं उस पर मंथन करने लगा। 5000 साल की जो बात है, उस समय पर हमको केवल इतना ही सिखाया जाता था कि बाबा आपसे पूछेंगे, बच्चे हमारे से मिले हो, तो आप कहना हां हम 5000 साल पहले मिले हैं। परंतु ज्ञान इतनी नहीं होने से कोई निश्चय से नहीं कहते थे, हमको सिखाया गया था तो हम कहते। सचमुच बाबा ने पूछ लिया, जब ब्रह्मा बाबा से मिले, बच्चे पहले मिले हैं, तो मैं सरल भाव से कह दिया, बाबा नहीं मिला, पहली बार आया हूं। जैसे यहां भी बाबा कभी कभी पूछ लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उठे, सब खुशी खुशी से उठते हैं, तो जरूर उठना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा तो उठेंगे ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप पहली बार ही आए हो, नहीं, हर कल्प में हर 5000 साल पहले आप आए थे। तो आप सभी को देखते हुए मुझे ये सारी सीन याद आई कि मेरे जैसे आप भी सभी यहां हर कल्प आप ही आए हैं, ये मुझे निश्चय है। तो इसीलिए स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, ये भी संदेश केवल आप जानते हैं, और आप ही इस विश्व को बता सकेंगे और कोई नहीं। तो इसके लिए बाबा ने अभी कुछ इशारे हम बच्चों को दिए हैं, क्योंकि बाबा हर मुरली में दो बात कहते हैं। एक है समय, समय की समीपता की, समय बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत थोड़े हैं। बाबा थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प तक भी नहीं चाहता है अभी। समय का बहुत प्रभाव है। तो इसीलिए समय भी कुछ ऐसा चल रहा है, हम सब बच्चों को मदद भी करेगा। समय इस बात को जितना हम समझ पाते हैं उतना हमको समय भी इस कार्य में मदद करेगा। दूसरी है अचानक शब्द। ये अचानक शब्द भी बहुत समय से बाबा कहते आए हैं। पता नहीं हम उस शब्द का अर्थ कहां तक हम जानते हैं, क्योंकि ये शब्द का उपयोग हम सदा ही करते आए हैं। कब करते हैं? जब कोई बात होती है तो कोई पूछते ये कैसा हुआ, क्या बतावे अचानक हो गया। होने के बाद हम ये शब्द को लगातार यूज करते आए हैं, बोलते आए हैं। पर बाबा हमको होने वाली किसी बात के लिए ये शब्द बोलते आए हैं, बच्चे अचानक होगा, जो कुछ भी होगा अचानक होगा। तो इसीलिए हम इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को बाबा की प्रत्यक्षता करने की तैयारी करना है, क्योंकि बाबा का भी इच्छा है, आशा है, वो भी बच्चों के ऊपर ही है। क्या आशा है कि बाबा ने स्पष्ट बता दिया, इतना अच्छा शब्दों में बताया कि इस शिवरात्रि पर आप बच्चों के अड़ोस पड़ोस वाले मित्र जो रहने जानने वाले आपको, वो ये न कहे कि अरे इनको पता था फिर भी इन्होंने नहीं बताया हमको, ये उलाइना नहीं दे। अभी तक बाबा कहते थे कि बाबा को उलाना नहीं दे कि भाई बाबा आए और हमको नहीं बताया। इस बार बाबा ने ये नहीं बोला, बाबा ने कहा कि आपको वो दोष न दे, आपके अड़ोस पड़ोस, आप जिनको जानते हो, आपके जो मित्र संबंधी है, वो ये न कहे आपको मालूम होते हुए भी हमको नहीं बताया। इसलिए इस शिवरात्रि पर आपको इतना काम तो करना ही है, जो आप जानते हैं आपको बताना होगा। ये समस्या मुझे भी था कि बताना तो चाहता हूं मैं, पर कैसे बताऊं। सीधा किसी को बता देंगे कि भगवान आ चुका है तो वो कहेगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा भला हमारा साथ था, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पर ये अचानक किसको क्या हो गया। तो इसीलिए हम सोचते थे सच जानते हुए भी किसी को सीधा कहने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम था, क्योंकि दुनिया में अभी पता नहीं कितने लोग ऐसे निकले हैं। एक मेरा मित्र अभी बोलते थे कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि भाई ये जो कुंभ मेला में गया इतने संतों को देखा, तो वो हैरान हो गया कि भाई मुझे ये कभी मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि भाई हमारे देश में इतने संत हैं, इतने सन्यासी लोग हैं। तो इसी प्रकार अपने आप को भगवान कहने वाली भी पता नहीं कितने लोग हैं, धीरे धीरे सब बाहर आते जा रहे हैं कुछ। तो इसीलिए हम बच्चों को भी थोड़ा संभल के, हमारे जो विदेश के भाई बहने हैं ना, वो तो बिल्कुल ही बहुत कॉशियस रहते हैं, किसी को ऐसे सुनाने में सीधा वो कहते हैं नो बाबा, थोड़ा सा आप सोच के कहो, हमारे विदेश में इस तरह से बोलेंगे तो फिर लोग बिल्कुल ही हमको एडमिट करा देंगे। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ा कि भाई, क्योंकि आप जानते हैं हर बार बाबा मीडिया कहते हैं, मीडिया मीडिया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तीर यहां लग जाता था कि भाई हमको करना चाहिए, कुछ तो करें, जल्दी से जल्दी बाबा का प्रत्यक्षता कराए, परंतु इस बार बाबा ने एक छोटा सा युक्ति हम बच्चों को टच कराया। कराता तो वही है, करण करावन हार है। तो एक चार पेज का एक मैसेज हम लोगों ने छापा है, इसका नाम है शिव आमंत्रण। तो उसमें क्या लिखा है, जो समय का, जो शिवरात्रि का, ये सब वर्णन करते हुए जो जो बाबा से अभी तक मिले हैं, हमारे सीनियर्स हैं, दादियां हैं और भारतवर्ष के वीवीआईपीस हैं, जिन्होंने भी बाबा से यहां मिले हैं, तो उनका क्या अनुभव है, वो थोड़े शब्दों में चार पेज न्यूज़पेपर साइज में मल्टी कलर में हम लोगों ने वो छापा। अभी भी हम सोचते हैं ये कैसे बना, हम नहीं जानते, बन गया, हो गया और आज सारे भारतवर्ष में सबका हाथ में मिल भी गया, बाबा के बच्चों के हाथ में। और लगातार हमको मैसेज आ रहा है कि हम ये इस बार देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, जिनकी सेवा हम लोगों ने किए हैं और जो बाबा से मिले हैं वो लोग कह रहे हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए और हमने देखा, हम मिले और हमारा अनुभव है ये। तो इस बात को हम लोग, इतना अच्छा लग रहा है कि हमको नहीं बोलना है अभी, पर हम जिनकी सेवा किए हैं वो कहे तो फिर देखो बात दूसरी है। हां, ये जरूर है, बाबा ने अपने अपने जो बच्चे हैं और अपने सेंटर्स हैं उसको भी बाबा ने तैयारी कर रहा है। किस बात का? तो समझो, किसी को मालूम हो गया शिवानी बहन द्वारा, हमारे चैनल्स द्वारा, ये या ये शिव आमंत्रण द्वारा, हमारे जो इतने पब्लिकेशंस है इस समय पर, ज्ञानामृत है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, ओम शांति मीडिया है, प्यूरिटी है, अनेक, इन सब में हम लोग लिखेंगे इस बार। पर आप ये सोचिए, ठीक है, ठीक है, परमात्मा आ चुके हैं, ठीक है, तो समझो किसी को ख्याल होता है कि भाई अच्छा परमात्मा आ चुके हैं तो फिर हम क्या करें, तो कोशिश करेंगे, हमारे नजदीक में कोई ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है तो बाबा को भी मालूम है कि कोई टीवी में अनुभव नहीं होता है या अखबार पढ़ने से कोई अनुभूति नहीं होती है परमात्मा का। परमात्मा का अनुभूति परमात्मा के स्थान से ही होता है। तो आप सभी मधुबन में आए हैं तो आपको मालूम है ये स्थान है जहां पिछले 16 साल से स्वयं भगवान यहां आकर के हम बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं। मुझे याद है बाबा ने एक बार कहा था, इस डायमंड हॉल को भी आप कोई संकल्प रख के राउंड लगाते हैं तो वो भी पूर्ण हो जाता है। शायद भक्ति मार्ग में भी इसीलिए सब मंदिर को परिक्रमा करते रहते हैं। तो ऐसी बात इस समय पर हम जब लोगों को बोलेंगे कि वो सेंटर पर जब आएंगे तो उनको अनुभूति होना ही होना है, सिर्फ इतना ही है। बाबा ने पहले शुरू किया था ट्रैफिक कंट्रोल, आपको मालूम है, पहले अमृत वेला। अमृत वेला जो है यज्ञ के आदि से है। अमृत वेला के आप कभी कहानी सुनेंगे, हमारी दादियों का 14 साल का जो तपस्या है, रात और दिन एक करके इन्होंने जो तपस्या की है वो अमृत वेला तो अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। दादियां दादियां ही हैं। जब हम आए तो हमको बताया गया कि 3 बजे 3:30 बजे से अमृत वेला का अभ्यास हम लोगों ने शुरू किया, तो उसी से हमारी ये शक्ति बनी। जो कुछ भी आप चाहते हो, मुझे याद है फर्स्ट टाइम 1960 में शिवरात्रि पर एक आर्टिकल लिख के मैंने डेक्कन हेराल्ड एक पेपर में प्रिंट कराया, उन्होंने मुझे 200 रुपया उस आर्टिकल के लिए दिया 1960 में। जब मैंने बाबा को कहा तो बाबा को बहुत खुशी हुई, तो बाबा ने कहा बच्चे इस कला को तुम कंटिन्यू रखो। तो मैंने कहा कि क्या करूं बाबा। बाबा ने उस वक्त मुझे कहा था बच्चे 4 बजे उठ के कलम लेके बैठो, बाबा अपने आप ही लिखाएगा। वो दिन था कलम के दिन, पर आज के दिन आप जानते हैं कंप्यूटर के हैं। तो जो बाबा ने कहा था वो आज तक भी अभी भी मैं वही अभ्यास करता हूं। तो उस दिन एक अखबार के निमित्त बने, आज बाबा पता नहीं 1 सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंचाने का ऐसा साधन बनाए हैं। तो रोज कुछ न कुछ बाबा, हमारी जानकी दादी को भी खुशी होती है कि कुछ न कुछ संदेश सबको मिलना चाहिए। जो भी बाबा के संपर्क में आए उनको रोज कुछ न कुछ मैसेज मिलना चाहिए। तो इस प्रकार बाबा की वरदान रहे अमृत वेला के लिए। अमृत वेला ही इस यज्ञ की एक नंबर 1 फाउंडेशन है। जो शक्तियां कहो या जो भी टचिंग्स बाबा जो करना चाहते हैं, क्योंकि उठने के बाद प्रकृति के सारी दुनिया के वातावरण के साथ टेलीफोन एंगेज हो जाता है। कई बार आप देखते हैं एंगेज है, पर एक अमृत वेला ही है। वो भी बाबा ने कहा 3 बजे से 5 बजे तक, बाकी टाइम नहीं। 5 बजे के बाद आप देखेंगे भक्तों का भीड़। बाबा ने कहा मैं भी बिजी हूं, मेरा फोन भी बिजी है। तो हम बच्चों के लिए बाबा अमृत वेला का पहला हम बच्चों को दिया। जो बाबा की प्रत्यक्षता हम चाहते हैं, किसी को टचिंग भी हो और दूसरा आपके सामने या बाबा के सेवा स्थानों पर कोई आए उनको अनुभव हो, तो उसके लिए अमृत वेला करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि वो समय आ रहा है, वहां तक जाए और उनको अनुभूति नहीं हो तो उसका फिर हम जवाबदार हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सब बच्चों को अमृत वेला एक बाबा का पहला वरदान है। दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल है, ये भी हमारे लिए बाबा का बहुत बड़ा वरदान है। जो सारे दिन में कुछ भी कार्य करते हो, घंटे में 1 सेकंड के लिए भी, मुझे एक बार, मैं अपने आप को छोटा बहुत बिजी समझते थे, जब काम करने जाते हैं तो वहां लगातार उस कार्य में बिजी रहते हैं। तो छोटा सा था, बाबा के सामने मैंने कहा बाबा क्या करे, मैं भी करना चाहता हूं पर बहुत कार्य इतना व्यस्त रहते हैं। तो बाबा हंसते हुए कहा बच्चे पानी पीते हो। बाबा पानी तो हर घंटा हर 2 घंटे में पीना ही पड़ता है। अच्छा, टाइम मिल जाता है तो बीच में कुछ चाय वाय भी पीते होंगे। तो मैंने कहा वो तो फिक्स है बाबा, टाइम पर हमको वहां चाय आ जाता है, ये सब वो भी। अच्छा, उसके लिए भी टाइम है। बाबा ने कहा कभी बाथरूम में भी तो जाते होंगे। तो हमारा तो उसी टाइम कपाट खुल गया। तो टाइम निकालना है तो निकल सकता है, टाइम है, पर उस टाइम पर बाबा को याद करना है, ये स्मृति बाबा ने पक्का करा दिया था। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टाइम नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हर घंटे में 1 मिनट भी हम लोग बाबा के लिए देते हैं तो वो भी एक बहुत पावरफुल वातावरण बनेगा। चाहे वो आप कार्यस्थान पे करें, या घर पे करें, आश्रम में तो हम लोग को करना ही करना है, क्योंकि परमात्मा की प्रत्यक्षता का अनुभूति का स्थान है बाबा का सेवा केंद्र। ये तो हम कर रहे हैं अभी। इसके बाद भी बाबा ने समय के अनुसार, मैंने ब्रह्मा बाबा को भी देखा था, 67, 68 दो साल बाबा ने लगातार कैसे शाम की तपस्या को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। तो अभी भी हमारी जानकी दादी ने सारे विश्व को ये अनाउंस कर चुकी है कि 6:30 से 7:30 हमारी तपस्या चलेगी, और दादी कहीं भी होगी अपने स्थान पर ही बैठ के योग करती है, और हम सब मधुबन निवासी भी अपने अंदर ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हमको भी करना है जो हम करेंगे, क्योंकि आप भी सभी मधुबन निवासी बन के जा रहे हैं, इसीलिए आपको भी ये पक्का रहे कि इस समय पर बाबा ये चाहते हैं कि शाम को 6:30 से 7:30 तक हमको संपूर्ण साइलेंस की अभ्यास करना है। इतना ही नहीं, दादी ने कहा कि मैं ठीक हूं, शरीर मुझे साथ देती है, मैं 7:30 बजे रोज सारे विश्व को एक संदेश भी दूंगी, और दादी दे रही है सचमुच। जो PMTV या पीस ऑफ माइंड देख रहे होंगे उसमें हम लोग दादी जी को डायरेक्ट इसीलिए शाम को दिखाते हैं कि दादी ने हमको कहा है कि मैं सारे विश्व को संदेश दे रही हूं। 97 ईयर्स हमारी दादी जी आज। तो इसलिए हम सबको भी ये अभी करना है, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता की तैयारी हो रही है। तो ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरा, चलो बाबा की प्रत्यक्षता मीडिया द्वारा भी होगी, चैनल द्वारा भी होगा, आप भी अपनी पूरी पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपकी मुख से भी लोग सुनेंगे, उसका भी अभी प्रभाव हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, किसी की को आप बहुत समय से बताते होंगे, पर अब आप उनको बताएंगे तो उसकी असर ही दूसरा है। अभी जो न मानने वाले भी अभी आपका सुनने लिए तैयार हो रहे हैं, ये आश्चर्य की बात आपके सामने आएगा, आप थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए। परंतु ये सब होगा, उसके साथ साथ वो ये कहेंगे ठीक है परमात्मा भी आ चुके हैं, ओके, आप सबको देख के हमको हो रहा है कि ठीक है भगवान आ चुका है, क्योंकि भगवान के अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा? तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। बाबा ने कहा था हरेक के पास, चाहे बैज में, चाहे जेब में, चाहे घर पे लक्ष्मी नारायण का चित्र भी होना जरूरी है, क्योंकि हमको अभी बताना होगा भाई ये है। इतने सुंदर स्वर्ग के चित्र बनाए हैं हमारे आर्टिस्ट सभी, इतने अच्छे अच्छे। मैं अपने बेड के सामने ही बहुत बड़ा स्वर्ग का एक चित्र लगा के रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आने वाली है, ये जाने वाली है। साकार बाबा का हमने प्रैक्टिकली देखा था कि बाबा लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट रखे थे, और कई बार बाबा मुरली के बीच में बोलते थे बस मैंने ये शरीर छोड़ा, बस अभी ये जाके बना। बाबा को बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि बस अभी मैं बना के बना। तो हम बच्चों को भी इस समय पर बाबा की प्रत्यक्षता होना माना, हम सबको अपनी दुनिया की तैयारी पे रहना है। ये जो समय के अनुसार प्रत्यक्षता होगी, पर अचानक क्या होगा, अचानक जो होना है वो दुनिया के लिए उसको विनाश होगा, पर हमारे लिए तो आने वाली दुनिया क्या होगा। कई हमारे भाई बहन कैलकुलेट करते हैं, बाबा ने कहा था 100 साल संगम, यज्ञ की 75 साल हो गया, 1111 जो है वो तो 25 साल में हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब श्री कृष्ण का जन्म भी चाहिए, सतयुग का परिवर्तन होकर के सतयुग की नजारा भी दिखना चाहिए। तो बाबा का एक ही युक्ति है, अचानक अचानक अचानक। तो इसीलिए वो अचानक होने से पहले हम बच्चों को एक और काम करना बाकी है। अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, तपस्या, ये तो सब हमने किया, परंतु सतयुग में जाने के लिए तो जो चाहिए वो एक चीज है, क्योंकि वो देवता है। सतयुग में देवताएं रहते हैं, देवता माना दैवी गुण वाले। तो अभी हम बच्चों को थोड़ा सा यहां ही, ये नहीं कि सतयुग में जाने के बाद गुण आएंगे, जैसे हम यहां कहते हैं ना शक्तियां तो यहां ही चाहिए, शक्तियों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं हर शक्तियां समय अनुसार काम आता है, तो शक्तियां यहां चाहिए, फिर गुण कब चाहिए, कहां चाहिए? गुण भी यहां होंगे तो वो सतयुग में ही काम आएगा। बाकी आपने कितना सेंटर खोला, कितने लोगों को ज्ञान दिया, कितनी सेवा की, कितना, मैं नहीं समझता हूं, न चित्रगुप्त जी पूछेंगे, न धर्मराज पूछेंगे, न बाबा पूछेगा। बाबा यही पूछेगा कि ये कौन से नंबर का बच्चा है, 8 का, 108 का, 16108 का, 33 लाख का, किस आधार पर? 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, 12 कला संपूर्ण, मतलब गुणों का है। तो गुणों का भी हम लोगों को अभी अभी डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे देवता बनना है तो मेरे अंदर गुण कितने आए हैं। जैसे आईने के सामने जाते ही हमको अपनी फेस देखने में जितनी खुशी होती है, उतना ही हमारे अंदर इस समय पर गुण कितने हैं। क्योंकि ज्ञान सुना चुके हैं और सुना रहे हैं, फिर भी लोगों को विश्वास थोड़ा सा अभी बाकी है, पर आपके अंदर जितना जितना गुण बढ़ता जाता है तो प्रत्यक्षता भी बहुत सहज होती जाएगी। ज्ञानी तो आत्मा, बाबा कभी कभी कहते हैं पंडित है, पूरा ज्ञान है, हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, पर नदी पार होने के लिए, तो सतयुग में देवता बनने के लिए दैवी गुण ही हमारा एकमात्र साधन है। तो ये प्रत्यक्षता अभी अभी होना है, बाद में नहीं होना है, अभी होना है। हां भाई, यही है, यही है जो बाबा ने कहा, शिव बाबा ज्योति स्वरूप यही है, यही है। तो साथ साथ में सतयुग की जो देवताएं भी जो है वो भी यही है, यही है। ये जो शब्द है वो हम बच्चों के अंदर जब तक वो देवता गुण नजर नहीं आता है तो परमात्मा की प्रत्यक्षता में भी थोड़ी सी देरी हो रही है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को तपस्या के साथ साथ गुणों का भी अभ्यास करने का। तो गुण कहां से आएगा? लिखने से, पढ़ने से, विचार करने से। गुण का एक ही रास्ता है, कहते हैं मनी मेक्स मनी। गुण भी ऐसा ही है, गुण मेक्स गुण। जब तक गुण दान नहीं करेंगे गुण बढ़ेगा नहीं, गुण आएगा नहीं, दूसरी कोई रास्ता नहीं। हमने प्रकाशमणि दादी जी से एक दिन प्रश्न पूछा था, दादी जी आप सुबह से रात तक इतना व्यस्त रहते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर क्या लक्ष्य है जो सुबह से शाम तक आप अपने को इतना बिजी रखे हैं। तो दादी जी ने कहा मेरा एक ही लक्ष्य होता है, जो आत्माएं मेरे सामने आए वो संतुष्ट होके जाए, खुश होके जाए और दुआएं देके जाए। अरे हम समझते हैं दादियां तो आशीर्वाद देने के लिए, दुआएं देने के लिए है, पर हमारी दादी जी ने कहा कि प्रकाशमणि दादी जी जो है वो दुआएं लेती थी दिल से। तो वो दिन और आज के दिन मुझे ये पक्का हो गया है कि दुआएं देना सबको इच्छा होता है, सबको ठीक है, पर दुआएं लेना भी एक बहुत बड़ी कला है। किसी की दिल से दुआएं निकले हमारे लिए तो ये एक कला अभी इसी समय पर हम लोगों को इसको बढ़ाना है, है आप सबके अंदर है, क्योंकि हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं। एक एक बच्चों को बाबा ने गिन गिन के चुना है इन करोड़ों आत्माओं में से, तो इसीलिए ये गुण कोई बाहर से नहीं आ रही है, ये आपके अंदर ही है, बस अब समय आ चुका है कि इसको अभी प्रकट होने का। आपकी मुस्कुराहट, आपकी सोच, आपके अंदर से दिल से, मैं बाबा के लिए सदा कहता हूं ब्रह्मा बाबा का एक मंत्र था सर्व जने सुखिनो भवंतु। हमारे निर्मल शांता दादी जी कहते थे अज्ञान में भी गंगा में ऐसे तीर्थ देंगे तो ये नहीं कहेंगे कि भई मेरे बाल बच्चे या परिवार को सुखी हो, नहीं, तो बाबा सदा ही कहते थे कि सर्व जने सुखिनो भवंतु, सबका भला। तो इस प्रकार हमारे दिल के अंदर ये भाव तो है कि सबका भला हो, किसी भी प्रकार से दूसरों का अवगुण नहीं दिखाए। अभी अभी की जानकी दादी का एक तीर जो मुझे दिल को लगा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो दादी ने कहा मेरे पास कोई आए, कोई बहन कोई भाई, तो कहने लगे वो ऐसे है वो ऐसे है वो ऐसे करते हैं। तो दादी ने कहा सुन, पहले दादी सुनती है प्यार से, तो दादी ने कहा वो है या नहीं है मुझे मालूम नहीं पर तुम तो हो ऐसा ही। उसको आश्चर्य हुआ कि दादी मेरी कितनी महिमा करती है, दादी को मेरे ऊपर कितनी प्यार है दादी, और आज मुझे दादी कहती है कि भाई तुम हो ऐसा, जो अवगुण मैंने दूसरों का सुनाया वो कहती है तुम हो। तो दिमाग खुल गई, तो दादी ने कहा देखो आपने जो इसका 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 जो कहा ये सारा आपके अंदर तो पहले आ गई, तो सुबह से शाम तक आपको जहां भी अवगुण मिला वो सारा आपके अंदर भरता गया, म्युनिसिपैलिटी के ट्रक बन गई, वो तो अपना अपना घर की कीचड़ निकाल भी दे पर आपके अंदर जो एक बार भर गया ये ऐसा है, ये तो अभी तक यहां ही है, अब इसको खाली करना इतना आसान नहीं है। तो दादी ने कहा आज से भले कोई कुछ भी हो आप तो नहीं देखो उसको, कितनी अच्छी बात है। वो दिन आज के दिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि भाई कोई भी मेरे सामने आवे ये कौन है, नहीं ये तो बाबा के बच्चे हैं, ये तो महान आत्माएं हैं, सर्व गुणों से संपन्न है, ताकि वो गुण तो मुझे आवे। तो इसीलिए इस समय पर हम बच्चों को देवता बनने की बिल्कुल तैयारी में है, 111 की तैयारी में है, सतयुग की आगमन की तैयारी में है, और हमको ही जाना है। बाबा ने कहा गेट भी खुल रहा है, वो टाइम आ चुका है, तो जाएंगे कौन? जो गुण वाले आत्माएं, जो अपने आप को देवता अनुभव करने वाले ही जा सकते हैं। कौन, ऐसा प्रश्न नहीं है। मुझे आत्मा को ही बनना है, मुझे ही ऐसी गुणवान बन करके जाना है। ये अभ्यास हम बच्चों को करना है, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। शिव बाबा की प्रत्यक्षता शब्दों से नहीं करना है, शब्दों से ही करना है तो सारी दुनिया में सत्यम शिवम सुंदरम उसकी वर्णन इतनी है। आज कुंभ मेला में चारों ओर गूंज उठा है, केवल भगवान की ही महिमा थी। परंतु इस समय पर बाबा हम बच्चों से एक तो तपस्या, जो कर्म का हिसाब किताब भी यहां ही पूरा करना है, चाहे भोगना से चाहे तपस्या से, दोनों मंजूर है, पर खत्म करना है, चुकतू करना है। साथ साथ जहां स्थान है बाबा के, उस स्थान को भी मंदिर बनाना है, जो कोई भी आत्माएं वहां आए वो अनुभव करके जाए। तीसरा, जो आने वाली दुनिया में हम ही आत्माओं को जाना है तो वहां केवल दैवी गुण वाले आत्माएं ही जा सकते हैं, दूसरी कोई भी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए अपने अंदर रोज ये गिनना है। अभी तक हम लोग ज्ञान रत्नों को गिनते रहे, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, ज्ञान रत्नों का मतन करते रहे, पर इस समय पर हम बच्चों को गुणों का भी रोज थोड़ी थोड़ी उसके अभ्यास भी करना होता है। हम लोगों को कहते थे यू स्माइल द वर्ल्ड विल स्माइल, तो हर्षित मुक्ता भी एक बहुत बड़ी चीज है। क्वेश्चन मार्क से नहीं, कौन क्या नहीं, कोई भी हो। बाबा सदाई उदाहरण देते थे कि जिस मंदिर में जो भगत जाते हैं, वो जो हर्षित मुक्ता उन देवता की वो जो पोज देखते हैं रोज, उसी के कारण वो जाते हैं। पर किसी भी दिन थोड़ा भी उनके फेस में और एक्शन में थोड़ा फर्क होगा तो दोबारा वहां नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी हम लोग अनुभव कर चुके हैं। वैसे हम हमसे बहुत खुश है, बहुत अच्छे, बहुत समय चले, फिर जब कभी थोड़ा सा उनको दिखाई दिया हमारी कोई अवगुण या कोई ऐसा, तो वी लॉस्ट सो मेनी। हम सबको अनुभव है। तो इसीलिए ये समय है जो बाबा कहते हैं अचानक का समय, अचानक वो चीज है जब परिवर्तन होना होगा। कहते हैं जिसको शरीर छोड़ना होगा वो बोल के कोई नहीं गया है। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी परिवर्तन होने का हो, तो आपको मालूम है जो दो दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जिसको राहु केतु या एस्ट्रॉइड कहते हैं हम लोग, जो आकाश से धरती पर गिरने का नक्षत्र जैसा, उल्का जैसे है, तो कहते थे धरती के बहुत नजदीक आने वाला है, वो 27,000 माइल दूर में है, फिर भी वो कहते थे बहुत नजदीक आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। पर हुआ ये है कि वो तो जब आए उससे पहले ही एक ऐसा उल्का वो आकर के रशिया के एक जगह पे गिरा, इतना भयंकर इसकी आवाज, जो 30 गुना ज्यादा हिरोशिमा में जो बॉम्ब डाले थे उतना पावरफुल था वो, वहां फटके गिरा। हजार लोगों को उसकी इफेक्ट हुई, हजारों बिल्डिंग्स वगैरह बहुत नुकसान हुआ ऐसा। पर सब कुछ अचानक, किसी ने कोई सोचा भी नहीं था। वो तो जो जिसके लिए बोलते थे वो तो आ भी गया नजदीक और चला भी गया, पर बीच में एक ये इंसिडेंट्स भी हो गया। तो इसी तरह से होने का कुछ भी अभी ऐसा हो रहा है जो बाबा का अचानक का समय, पर हमारे लिए अचानक उस बात की है तो बस आए कि आए। हमारी दुनिया जो बाबा जो सतयुग की नजारा जो दिखाया है वो अभी हमारे सामने दिखना चाहिए। वो जितना हम गुणवान बनते जाएंगे हमारे लिए भी सभी आत्माओं के अंदर गुण ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही सीन है, बाबा से पहली बार जब मैं मिला था बाबा का पोज मैंने यही देखा था, आओ बच्चे। तो इसीलिए हम सभी बच्चों के लिए आज भी ब्रह्मा बाबा मम्मा हमारे पूर्वज सब इंतजार कर रहे हैं कि आओ बच्चे के रूप में, कि हम सब बच्चों को इस समय पर एक ही संकल्प रखना है, हम देवता थे, देवता है और देवता बनने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो बाबा के बाहों पसारे आप सबका स्वागत कर रहे हैं, तो इसलिए हम सभी बाबा के पास जाने के लिए जो बाबा ने हम बच्चों को जो मंत्र दिया था, जो पांच अवतार या जो हम इस समय पर है फरिश्ता बन करके कैसे निराकार स्वरूप में जाके फिर देवता बन के फिर ब्राह्मण बनते हैं, इस यात्रा में हम लोगों को अभी लगातार रहना है। क्यों? अचानक हो तो हम जानते हैं हमको कहाँ जाना है। तो ये अभ्यास इस समय पर हम करेंगे। अब बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे। ओम शांति।